एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपका दूसरा मेजबान।
और मैं हूं आपकी पहली मेजबान। आज हम एक ऐसी दुनिया की पड़ताल करने वाले हैं जो है तो हमारे पैरों के ठीक नीचे, लेकिन हमारी नजरों से पूरी तरह ओझल है।
हाँ, एक ऐसा अदृश्य साम्राज्य जो चुपचाप हमारे पूरे ग्रह को चला रहा है।
बिल्कुल। और इस सफर में हमारी गाइड हैं निकोलस पी मनी की किताबें। निकोलस एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो हमें कवक यानी फंगस की दुनिया को बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाते हैं।
फंगस, हाँ, ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले या तो मशरूम आता है या फिर ब्रेड पर लगी वो हरी हरी फफूंद।
सही बात है, अक्सर तो हम इसे एक परेशानी ही समझते हैं। तो आज ये विषय इतना जरूरी क्यों हो गया है?
यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हम जिसे मामूली समझते हैं वो असल में पृथ्वी पर जीवन की नींव है। देखिए, आज हम जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, इन सब बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। और मनी कहते हैं कि जवाब शायद इसी भूले बिसरे साम्राज्य में छिपा है। ये सिर्फ सड़न गलन नहीं बल्कि जीवन के असली वास्तुकार हैं।
वाओ, पृथ्वी के भूले हुए वास्तुकार, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो चलिए इन वास्तुकारों की दुनिया के दरवाजे खोलने वाले निकोलस पी मनी के बारे में थोड़ा जानते हैं। वो है कौन?
निकोलस पी मनी ओहायो की मियामी यूनिवर्सिटी में एक माइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कवक के विशेषज्ञ।
अच्छा,
पर उन्हें सिर्फ एक वैज्ञानिक कहना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल से ज्यादा फंगस के अध्ययन में बिताए हैं।
30 साल?
हाँ, और इस दौरान वो इनके एक तरह से दीवाने हो गए हैं।
दीवाने? वैज्ञानिकों के लिए ये शब्द कम ही इस्तेमाल होता है। ऐसा क्या खास है उनके नजरिए में?
उनकी खासियत यही है कि वो फंगस को किसी लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे रखी चीज की तरह नहीं देखते।
तो फिर कैसे देखते हैं?
वो उन्हें एक जीवित धड़कते हुए नेटवर्क के रूप में देखते हैं। और वो एक बेहतरीन कहानीकार भी हैं। वो फंगस की जटिल बायोलॉजी को रोमांचक किस्सों में बदल देते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि फंगस अलग थलग जीव नहीं है बल्कि वो एक धागा है जो पूरे जंगल को, पूरे इकोसिस्टम को एक साथ पिरोकर रखता है।
मतलब वो सिर्फ क्या नहीं बताते बल्कि तो क्या भी समझाते हैं। चलिए तो फिर उनकी किताब के दिल में उतरते हैं। अगर हमें इसके मुख्य विचार को समझना हो तो वो क्या है?
तो किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि हमने जीव विज्ञान को समझने में एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी गलती की है।
अच्छा, क्या गलती?
हम हमेशा से दुनिया को बस दो हिस्सों में देखते आए हैं, पौधे और जानवर।
हाँ, मतलब यही पढ़ते आए हैं हम सब।
बिल्कुल। पर मनी कहते हैं कि ये तस्वीर अधूरी है। एक तीसरा और शायद सबसे जरूरी साम्राज्य है कवक का, जिसे हमने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है।
यानी हम कहानी का पूरा हिस्सा ही छोड़ते आए हैं।
एकदम। और किताब का मकसद हमें यही एहसास दिलाना है। ये कोई भारी भरकम अकादमिक किताब नहीं है। इसका लक्ष्य है हमारी सोच को बदलना।
कैसे?
ये दिखाना कि फंगस सिर्फ मरे हुए जीवों को खाने वाले, मतलब डीकम्पोजर्स नहीं हैं, बल्कि वो जीवन के सक्रिय निर्माता हैं, इंजीनियर हैं और क्या कहते हैं, नेटवर्कर्स हैं। अगर हम उन्हें समझ लें तो हम प्लास्टिक का विकल्प बनाने से लेकर जहरीले कचरे को साफ करने तक बहुत कुछ कर सकते हैं।
ठीक है, तो अब इंतजार नहीं हो रहा, चलिए इस तीसरे साम्राज्य की गहराई में उतरते हैं। मेरा सबसे पहला और बुनियादी सवाल, फंगस असल में है क्या? क्या ये कोई अजीब तरह का पौधा है?
यही सबसे आम गलतफहमी है और यहीं से हमारी सोच में क्रांति शुरू होती है। फंगस एक बिल्कुल अलग किंगडम है। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जेनेटिक तौर पर वो पौधों से ज्यादा जानवरों के करीब हैं।
एक मिनट, क्या कहा? जानवरों के ज्यादा करीब? लेकिन वो तो एक ही जगह उगे रहते हैं पौधों की तरह, ये कैसे हो सकता है?
इसका जवाब उनकी बनावट में छुपा है। देखिए, पौधों की कोशिकाओं की बाहरी दीवार सेलुलोज से बनी होती है।
हाँ, जिससे कागज और कपड़ा बनता है।
बिल्कुल। पर फंगस की कोशिकाओं की बाहरी दीवार काइटिन नाम की चीज से बनी होती है।
काइटिन? ये नाम सुना सुना सा लग रहा है।
लगना भी चाहिए। ये वही पदार्थ है जिससे कीड़े मकोड़ों, मकड़ियों और केकड़ों का बाहरी खोल, उनका कवच बनता है।
कमाल है, मतलब जिस चीज से एक मशरूम की दीवार बनी है उसी चीज से कीड़े का कवच।
सही पकड़ा।
ये तो सच में बहुत अजीब बात है। इससे तो साफ पता चलता है कि इनका पौधों से कोई लेना वेना नहीं।
बिल्कुल। और ये तो बस शुरुआत है। जो मशरूम हम जमीन के ऊपर देखते हैं वो तो फंगस का पूरा शरीर है ही नहीं।
तो फिर क्या है?
वो तो बस एक पेड़ पर लगे सेब जैसा है, यानी उसका फल। असली जीव तो जमीन के नीचे एक विशाल जाल के रूप में फैला होता है।
एक जाल? कैसा जाल?
सोचिए कि फंगस का शरीर लाखों करोड़ों पतले धागों से बना है जो रेशम से भी बारीक होते हैं। इन धागों को हाइफी कहते हैं।
हाइफाई।
और जब ये लाखों धागे एक साथ फैलकर एक घना नेटवर्क बना लेते हैं तो उस पूरे जाल को माइसीलियम कहते हैं। ये माइसीलियम आपके बगीचे के मिट्टी के एक चम्मच में कई मील लंबा हो सकता है।
वाओ, मतलब एक अदृश्य इंटरनेट जो हमारे पैरों के नीचे फैला हुआ है। तो ये जीते कैसे हैं, क्या खाते हैं?
प्रकृति में इनकी तीन मुख्य भूमिकाएं हैं। आप इन्हें इनकी तीन पर्सनालिटी भी कह सकती हैं।
अच्छा।
पहली है अपघटक, यानी कुदरत के सबसे बड़े रिसाइकलर।
रिसाइकलर, जैसे हमारे यहाँ कचरा रिसाइकल होता है।
उससे भी कई बेहतर, ये ग्रह के मास्टर रिसाइकलर हैं। ये लकड़ी में पाए जाने वाले लिग्निन और सेल्यूलोज जैसे सख्त पदार्थों को भी पचा सकते हैं,
जिन्हें कोई और नहीं पचा सकता।
हाँ, जिन्हें कोई और जीव आसानी से नहीं तोड़ सकता। इनके बिना हमारी धरती मरे हुए पेड़ों, गिरे हुए पत्तों और मृत जानवरों के ढेरों से पट जाती। ये उन सब में बंद पोषक तत्वों को निकालकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं ताकि नया जीवन पनप सके।
मतलब ये मौत को वापस जिंदगी में बदल देते हैं। ये तो हुई इनकी अच्छी भूमिका, लेकिन फंगस का एक डरावना चेहरा भी तो होता है ना?
हाँ, और वो है इनकी दूसरी भूमिका, परजीवी, पैरासाइट। ये इनका स्याह पहलू है।
मतलब?
ये पौधों में भयानक बीमारियां फैला सकते हैं। आपने आयरलैंड में 19वीं सदी में पड़े आलू के अकाल के बारे में सुना होगा?
हाँ, सुना है।
वो एक फंगस की वजह से ही हुआ था जिसने पूरी फसल तबाह कर दी थी। और ये सिर्फ पौधों पर ही नहीं, जानवरों पर भी हमला करते हैं।
जैसे कि?
कोई उदाहरण है?
हाँ, एक फंगस है, शायद कुछ लोगों ने सुना हो, कॉर्डिसेप्स।
ओहो, कॉर्डिसेप्स, वो जो?
वही जो चींटियों के शरीर में घुस जाता है और, आप यकीन नहीं करेंगी, उनके दिमाग पर कब्जा कर लेता है।
सच में? हाँ बिल्कुल, एक जॉम्बी की तरह। ये उस चींटी को चलाकर किसी पत्ती के नीचे ऐसी जगह ले जाता है जहाँ फंगस के बढ़ने के लिए सही नमी और तापमान हो।
बाप रे।
फिर ये चींटी के सिर से बाहर निकलता है और अपने बीजाणु फैलाता है ताकि और चींटियों को संक्रमित कर सके। बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसा।
ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। चलिए अब इनकी तीसरी भूमिका पर आते हैं, उम्मीदें ये थोड़ी सकारात्मक होगी।
हाँ, तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सहजीवी की, यानी ये साझेदारी में रहते हैं,
पार्टनरशिप में।
बिल्कुल, और इनकी सबसे बड़ी साझेदारी है पौधों के साथ, जिसे माइकोराइजा कहते हैं। इसका मतलब ही है फंगस जड़।
फंगस जड़, ये कैसी साझेदारी है?
ये एक खूबसूरत समझौता है। दुनिया के 90% से ज्यादा पौधे अपनी जड़ों में फंगस के साथ रहते हैं।
90% से ज्यादा?
हाँ, फंगस अपने माइसीलियम नेटवर्क से, जो जड़ों से कहीं ज्यादा दूर तक फैल सकता है, पौधे के लिए मिट्टी से पानी और फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्व खींचता है।
और बदले में?
और बदले में पौधा फोटोसिंथेसिस से बनाया गया शुगर, यानी अपना भोजन, फंगस के साथ बांटता है।
तो ये एक तरह का लेन देन है। तुम वो मेरे लिए पानी लाओ, मैं तुम्हें खाना दूंगी।
एकदम सही। और ये दोस्ती अरबों साल पुरानी है। कई वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि पौधे शायद पानी से निकलकर जमीन पर अपना जीवन शुरू ही इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास फंगस का ये सहारा था।
कमाल है। मतलब हम जो भी पेड़ पौधे अपने आसपास देखते हैं वो सब इस अदृश्य पार्टनरशिप की वजह से ही हैं।
बिल्कुल।
तो जो मशरूम हमें दिखता है,
हाँ,
अगर वो फल है तो उसका काम क्या है?
मशरूम का एक और सिर्फ एक काम है, प्रजनन,
रिप्रोडक्शन।
हाँ, यानी अपने बीजाणु स्पोर्स बनाना और उन्हें दूर दूर तक फैलाना। और जिस तरीके से वो ये करते हैं वो किसी इंजीनियरिंग के करिश्मे से कम नहीं है।
अच्छा, ऐसा क्या खास है उसमें?
ज्यादातर मशरूम अपने बीजाणुओं को हवा में लॉन्च करने के लिए एक नायाब तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे बैलिस्टोस्पोर डिस्चार्ज कहते हैं।
बैलिस्टोस्पोर डिस्चार्ज।
इसमें बीजाणु के ऊपर पानी की एक नन्ही सी बूंद बनती है। जब ये बूंद पास की एक और बूंद से मिलती है तो एक ऊर्जा पैदा होती है।
और फिर
वो ऊर्जा उस बीजाणु को एक गुलेल की तरह 25,000 G-फोर्स के साथ हवा में उछाल लेती है।
25,000 G-फोर्स? ये तो किसी फाइटर जेट के पायलट से भी हजारों गुना ज्यादा हुआ।
हाँ, एक माइक्रोस्कोपिक गुलेल।
अविश्वसनीय। तो ये दुनिया कितनी बड़ी है?
इतनी विशाल कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें ब्रेड फुलाने वाले यीस्ट से लेकर जॉम्बी बनाने वाले कॉर्डिसेप्स तक लाखों प्रजातियां हैं। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जीवित जीव भी एक फंगस ही है?
नहीं, सच में? मैं तो सोच रही थी कोई ब्लू वेल या कोई विशाल पेड़ होगा।
नहीं, अमेरिका के ओरेगन में एक शहद मशरूम का माइसीलियम नेटवर्क है जो लगभग 4 वर्ग मील में फैला है।
4 वर्ग मील?
हाँ, करीब 2400 एकड़। ये एक ही जीव है जो हजारों साल पुराना है। अगली बार जब आप जंगल में चलें तो ये सोचिएगा कि आप शायद एक ही विशाल जीव के ऊपर चल रही हैं।
ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। तो इस सारी जानकारी से ये साफ है कि हम एक पूरी दुनिया को नजरअंदाज कर रहे थे। मुझे लगता है कि यहीं से किताब का पहला बड़ा संदेश निकल कर आता है, भूला हुआ साम्राज्य।
बिल्कुल सही, और इसी से दूसरा बड़ा आइडिया जुड़ता है, प्रकृति का इंटरनेट, या जिसे कुछ वैज्ञानिक वुड वाइड वेब भी कहते हैं।
वुड वाइड वेब?
हाँ, ये जो माइसीलियम का नेटवर्क है, ये सिर्फ एक फंगस का शरीर नहीं है, ये एक जंगल के सभी पेड़ों को आपस में जोड़ने वाला एक कम्युनिकेशन नेटवर्क भी है।
कम्युनिकेशन नेटवर्क मतलब पेड़ आपस में बात करते हैं। ये सुनने में तो किसी कहानी जैसा लगता है।
ये सच है, पेड़ इस नेटवर्क के जरिए पोषक तत्व साझा करते हैं। एक बड़ा पुराना पेड़ अपने पास के छोटे पौधों को इस नेटवर्क के जरिए शुगर भेज सकता है ताकि वो पनप सकें।
अच्छा,
इतना ही नहीं, वो चेतावनी के सिग्नल भी भेजते हैं। अगर एक पेड़ पर कीड़े हमला करते हैं तो वो केमिकल सिग्नल भेजकर पास के पेड़ों को सावधान कर सकता है
ताकि वो अपनी रक्षा के लिए तैयार हो जाएं।
हाँ बिल्कुल,
ये तो प्रकृति में सहयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा जंगल एक परिवार की तरह रह रहा है।
और यही हमें तीसरे बड़े विचार की ओर ले जाता है कि फंगस समस्याओं के समाधान करता है।
प्रॉब्लम सॉल्वर्स?
हाँ।
अच्छा, कैसे?
ये बायोकेमिकल जीनियस हैं। इनके पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो वो काम कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, जैसे तेल के रिसाव को साफ करना या कीटनाशकों जैसे जहरीले केमिकल को तोड़ना। इस प्रक्रिया को माइकोरिमीडिएशन कहते हैं।
और मैंने सुना है कि अब इनसे सामान भी बनाया जा रहा है।
हाँ, अब माइसीलियम से प्लास्टिक के टिकाऊ विकल्प बनाए जा रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल, लेदर जैसे कपड़े, और यहाँ तक कि बिल्डिंग बनाने की ईंटें भी।
वाह,
ये पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल है और पर्यावरण के लिए एक क्रांति साबित हो सकता है।
इस सबसे जो एक आखिरी और शायद सबसे गहरी बात समझ आती है वो ये है कि फंगस हमें जीवन को एक अलग नजरिए से देखना सिखाते हैं।
सही कहा, हम इंसानी दुनिया में व्यक्तिवाद पर बहुत जोर देते हैं, मैं, मेरा, लेकिन फंगस की दुनिया नेटवर्क, सहयोग और जुड़ाव पर चलती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन अकेले नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़कर ही पनपता है।
ये सब जानना बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन जानकारियों का क्या कर सकता है?
बहुत कुछ। शुरुआत बागवानी से करते हैं। अगर आपके पास बगीचा है तो मिट्टी की कम से कम जुताई करें।
क्यों?
क्योंकि जुताई से ही ये नाजुक माइसीलियम नेटवर्क टूट जाता है। केमिकल खाद की जगह माइकोराइजल फंगी वाले जैविक खाद का इस्तेमाल करें, इससे आपके पौधे ज्यादा स्वस्थ रहेंगे।
ये तो बहुत काम की टिप है। और पर्यावरण के स्तर पर हम क्या कर सकते हैं?
जब भी आपको माइको मटेरियल से बने उत्पाद दिखें, जैसे फंगस लेदर से बना बैग या माइसीलियम से बनी पैकेजिंग, तो उन्हें सपोर्ट करें। ये प्लास्टिक के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बड़ा हथियार बन सकता है।
और सबसे जरूरी, शायद हमारी सोच में बदलाव लाना है।
बिल्कुल, अगली बार जब आप जंगल में या पार्क में कोई सड़ा हुआ, गिरा हुआ पेड़ देखें तो उसे मृत या बेकार न समझें।
तो क्या समझें?
एक पल रुककर सोचें कि फंगस उसे कितनी खूबसूरती से रिसाइकल करके नई जिंदगी के लिए पोषक तत्व तैयार कर रहे हैं। यह प्रकृति को देखने का एक नया नजरिया है।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि फंगस असल में जानवरों के कितने करीब है। वो काइटिन वाली बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। और ये कि दुनिया का सबसे बड़ा जीव एक अदृश्य नेटवर्क है जो हमारे पैरों के नीचे है, ये सोचना ही दिमाग को चकरा देता है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि प्रकृति में सब कुछ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। वुड वाइड वेब का विचार हमें सिखाता है कि सहयोग उतना ही जरूरी है जितनी प्रतिस्पर्धा, शायद उससे भी ज्यादा। कवक हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतें अक्सर वो होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं।
तो चलिए, श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इसे खत्म करते हैं।
जरूर, अगली बार जब आप कोई मशरूम देखें तो सिर्फ उसके ऊपरी हिस्से को ना देखें, उस विशाल अदृश्य बुद्धिमान नेटवर्क के बारे में सोचें जो आपके पैरों के नीचे फैला है और पूरे ग्रह को चुपचाप बिना किसी श्रेय के चला रहा है। और फिर ये सोचें, क्या हम इंसानी समाज के रूप में इन अदृश्य नेटवर्कों से सहयोग और जुड़ाव के बारे में कुछ सीख सकते हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।